नमो सिद्धाय नमो आये नमो लोरे दृष्टिकर सर्वथिर परिजय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टिया पालको परिजय नहि करिगौं। ले पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। देखिए आज मरण प्रसंग पर थोड़ी सी चर्चा करने का योग बना है। वास्तव में देखा जाए तो जगत में मरण कहा जाता है, लेकिन वास्तव में मरण कहाँ होता है? मरण तो ना देह का होता है और ना आत्मा का होता है, क्योंकि आत्मा त्रैकालिक ध्रुव वस्तु है, वो कभी मरण को प्राप्त होती नहीं है। और देह तो स्वयं जड़ है, जो जड़ वस्तु है उसके मरण का क्या अर्थ है? चैतन्य तो नहीं रहना, जीवंतता नहीं रहना, जड़ता हो जाना, उसका ही नाम तो मरण कहा जाता है। तो खरे खर तो चेतन कभी जड़ होता नहीं और जड़ कभी चेतन होता नहीं, फिर भी आखिर जगत में मरण नाम की वस्तु तो प्रसिद्ध है, मरण नाम का कार्य तो प्रसिद्ध है। हमारे शास्त्रों में भी मरणों के कई प्रसंग आते हैं, कई नाम आते हैं। कुमरण होता है, सुमरण होता है, समाधि मरण होता है, बाल मरण होता है, पंडित मरण होता है, पंडित मरण होता है, अकाल मरण भी का नाम हमने शास्त्रों में पढ़ा है। तो जब मरण होता ही नहीं है तो फिर इतने प्रकार के मरणों की चर्चा और मरण का प्रसंग बनना और मरण के समय जीवों का दुखी होना और ज्ञानियों को मरण का सहज योग बनने पर भी दुखी नहीं होना, ये सब बातें आपस में कैसे मेल खाती हैं? हमें इन बिंदुओं पे थोड़ी सी चर्चा करने का आज परिणाम है, अवसर है। तो देखिए जगत में तो वास्तव में मरण उसका नाम कहा जाता है कि जहां दो द्रव्यों की भिन्नता होती, दो द्रव्यों की भिन्नता से अभिप्राय जीव और पुद्गल, जो ये दो द्रव्य हैं, इन दो द्रव्यों की एक असमान जाति पर्याय है जिसका नाम मनुष्य है, त्रियंच है। जब वह द्वैत देह और आत्मा भिन्न भिन्न हो जाती है तो लोक में उसे मरण कहा जाता है। और ये मरण हमारे लिए एक कितना महत्वपूर्ण संदेश दे के जाता है, जिससे हम अपने मोह के कारण, दुख के कारण दुखी होकर के, कषायों के कारण दुखी होकर के, और उस संदेश को तो नहीं समझ पाते हैं, बल्कि उसे व्यर्थ ही उस अवसर को खो देते हैं। क्या संदेश दे के जाता है? संदेश ये दे के जाता है कि भाई, आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट कहा है कि देह और आत्मा दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, एक नहीं। और जो एक मानता है वह मूढ़ है, अज्ञानी है। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है। वह बहिरात्मा है और तत्वों के मामले में मूर्ख है, मोही है, मूढ़ है। लेकिन ये मरण हमारे लिए दोनों को अलग-अलग करके दिखा देता है कि देखो, जो जानन देखन हार वस्तु थी वो वस्तु अब इसमें नहीं है। तो इस देह को आग में रख देते हैं, भट्टी में रख देते हैं, और वह लकड़ी की भांति जल जाता है, राख हो जाता है। लेकिन कुछ ऐतराज व्यक्त नहीं करता। क्यों नहीं करता ऐतराज व्यक्त? क्योंकि खरे खर वहां ऐतराज व्यक्त करने वाला कोई तत्व ही मौजूद नहीं है। अरे, पहले जाना जाता है, फिर अच्छा या बुरा का विचार किया जाता है, अपने या पराए का विचार किया जाता है, जीवन या मरण का विचार किया जाता है। अब वहां जानने वाला ही तत्व तो नहीं है, तो वो सुख दुख का विचार ही नहीं करता है, सुख दुख की फीलिंग ही नहीं करता है, तो कौन उस पर ऐतराज दर्ज करे? इसलिए ये बात स्पष्ट है कि वास्तव में ये मरण हमारे लिए दुख का प्रसंग नहीं है, बल्कि वैराग्य का प्रसंग है। वैराग्य का कैसे प्रसंग है? कि जिसको हम एक मानकर, अपना मानकर उससे मोह करते थे, उसके कारण से कषायें करते थे, उसके कारण से राग द्वेष करते थे, सचमुच में वो तो कुछ था ही नहीं यहाँ ऐसा। वो तो देह तो जड़ था, और जो चैतन्य आत्मा था उसे तो हम जानते ही नहीं थे। हम तो देह के प्रति ही आसक्त थे, उसी को साथ संभाल करते थे। तो हम कितने बड़े अनादिकाल से मूर्खता में पड़े हुए थे। माने समाधि तंत्र में, श्लोकदेश में ऐसा श्लोक आता है, ऐसी बात आती है कि एक रानी थी। रानी तो रानी अपने पलंग पर अपने एक पुतले को बना करके और लिटाकर चली गई और गायब हो गई स्वयं। और जब राजा आया तो राजा ने पूरी रात उस पुतले की सेवा की, उसे मनाया, उसे समझाया, उसके हाथ पैर दबाए, उसके सिर दबाया, उसकी सही व्यवस्था बनाई, और सुबह देखा तो वहां तो कोई था ही नहीं। तो किसकी सेवा कर रहा था राजा रात में? तो जड़ पुतले की कर रहा था। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि हम जीवन भर किसके लिए जीते हैं और किसके लिए कमाते हैं और किसके लिए झगड़ा करते हैं, किस लिए के लिए राग द्वेष करते हैं? इस देह के लिए। देह है तो मैं हूं, देह है तो मेरे बाल बच्चे हैं, देह है तो मेरे माता पिता हैं। तो सारा का सारा काम हमारा उस राजा की तरह उसने तो एक रात किया और सुबह विरक्त होके दीक्षा ले ली, और हम सारी जिंदगी इसकी सेवा करते रहते हैं और अंत में पता चलता है कि यहाँ तो कोई था ही नहीं। बोलो तो कौन था? क्योंकि जिस जो यहाँ जीव मौजूद है, अरे उस जीव को तो तुम जानते ही नहीं हो। अगर जीव को जानते होते, ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव को जानते होते, तो दुनिया की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि फिर इस जड़ शरीर की सेवा करें। शास्त्रों से जान लेते हैं वो अलग बात, गुरुओं से जान लेते हैं वो अलग बात, वाणी से कह लेते हैं और सुन लेते हैं कानों से वो अलग बात, लेकिन वास्तव में वहां मूल में कोई मौत का सवाल ही नहीं है। फिर भी लोक में मरण एक शाश्वत सत्य है। वो क्यों है साहब? क्योंकि मरण का संबंध जन्म से है, और जिसका जन्म हुआ है उसका नियम से मरण भी हो। जन्म का संबंध मरण का संबंध संयोग से है। जिस जीवात्मा को इस देह का संयोग हुआ है उसका वियोग भी हो। परिवार का, कुटुंब का, समाज का, धन संपदा का, इनका संयोग हुआ है तो वियोग भी हो, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए महापुरुष तो ऐसा कहते हैं कि भाई मरण तो उसका नाम है कि जहां जीवन भर का इकट्ठा किया हुआ सब संयोग एक समय में बिखर जाए, एक समय में छूट जाए। आप विचार करो कि जब हमारे एक छोटी सी वस्तु गायब हो जाती है, गुम जाती है, लुट जाती है, तो हम कितने दुखी होते हैं। तो जहां जीवन भर के सारे संयोग का एक साथ वियोग हो जाए तो दुखी होना हमारा स्वाभाविक भाग ही नहीं। आचार्य कहते हैं कि दुखी होना तुम्हारा वहां तो स्वाभाविक है, लेकिन उसकी पर्दे के पीछे जाके तो देखो कि तुम्हारा क्या गया है। अरे भाई, जो गया है वो तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हारा था वो गया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं गया है। डॉक्टर साहब ने समाधि के सार में एक बहुत शानदार पंक्ति लिखी है कि भाई मरण तो देह के वियोग का नाम है और मरण तो एक समय में होता है। तो यदि एक समय में हम मरण के समय में सावधान रहे तो वही मरण हमारा समाधि मरण बन सकता है, वही कुमरण से सुमरण हो सकता है। अन्यथा तो कुमरण का फल अति संकलेश भाव ते मर्यो और घोर स्वब्र सागर में पर्यो। तो घोर स्वब्र माने नरक जैसे सागर में जाके पड़ जाएगा तो क्या होगा? दुखी होगा। इसलिए वास्तव में इसका नाम मरण नहीं, हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। इसलिए जब तक हम अपने उस अमरण स्वभावी त्रिकाली ध्रुव आत्मा को अपनाएंगे नहीं, उसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक हमारे मरण का भय नहीं टल सकता। और जब तक मरण का भय नहीं टलेगा, मरण का भय रहेगा, तो मरण होने का हमें कष्ट भी अनुभव होगा, और हमारे किसी इष्ट का मरण होने पर हमें दुख भी होगा। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होगा, लेकिन बात इतनी सी है कि ये सत्य हमें समझने के लिए शास्त्रों का गहन अध्ययन आवश्यक है। यदि हम अध्ययन करेंगे तो हम उस सत्य स्वरूप को समझ पाएंगे, और समझ पाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारे चित्त में जो मरण के साथ भय जुड़ा हुआ है, मरण के साथ हमारी कष्ट की वेदना जुड़ी हुई है। चार आर्त ध्यानों में अपन पढ़ते हैं ना, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, पर इष्ट वियोगज आर्त ध्यान का फल क्या है? नरक गति। तो जो हमारे इष्ट का वियोग हो गया है, उसके वियोग में यदि हम दुखी होते हैं, आर्त ध्यान करते हैं, तो उसका फल नरक होगा। तो जिसका फल नरक हो वो अच्छा कैसे हो सकता है? इसलिए वास्तव में तो मरण कोई वस्तु नहीं है, ना देह का मरण होता है ना आत्मा का मरण होता है। वास्तव में मरण तो हमारे चित्त में जो उसके प्रति एकत्व तो बसा हुआ है, अपनापन बसा हुआ है, ऐसे उस अपनेपन रूप मोह के कारण मरण कहा जाता है। क्यों? कि मोह यदि हम खत्म हो जाए तो हमें मरण नहीं लगता, फिर परिवर्तन लगता है। एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन हो जाने से कोई दुखी होता है क्या? अभी तो गांव में लोग रहा करते थे, गांव खाली हो रहे हैं, शहर भर रहे हैं। गांव से कोई शहर जाता है तो कोई दुखी होता है कि खुश होता है? तो ऐसे ही हमारी ये औदारिक शरीर जो कि दुखों का और रोगों का घर है, उसको छोड़ करके यदि कोई बैक्टीरिया एक शरीर जहाँ रोग नहीं है, कमाने धमाने का कोई टेंशन नहीं है, ऐसे देवाधिक पर्याय में यदि कोई जाता है तो इसमें दुखी होने की क्या बात? इसलिए ज्ञानी दुखी नहीं होता। किसी कवि ने लिखा है, किसी ने पूछा मानो कि भाई तुम दुखी नहीं होते हो? जब देखो तब हर परिस्थिति में सुखी ही महसूस करते हो, अपने को आनंदित ही करते हो। तो उसने कहा कि भाई दुखी होने का कोई प्रसंग ही ख्याल में नहीं आता है, दुखी होने का क्या काम? तो उसने प्रश्न किया कि अगर धन का हरण हो जाए तो सारे जगत के जीव दुखी होते हैं पर तुम दुखी नहीं हो, यदि तन का हरण हो जाए तो सारे जगत के जीव दुखी होते हैं पर तुम दुखी दिखाई नहीं देते, तो इसका कारण क्या है? तो उन्होंने एक बहुत शानदार छंद लिखा है, मैं पढ़ूंगा उसे, गद्य में पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे वो गाकर पढ़ने लायक है, बहुत बढ़िया। हरो जाओ धन ओ बिछुड़ जाओ प्रियजन, प्रियजन बिछुड़ जाने का मतलब मरण हो जाना। हरो जाओ धन ओ बिछुर जाओ प्रियजन और नसी जाओ तन, ये तन का नाश हो जाए। नसी जाओ तन तो मुझे क्या हरज है, मुझे क्या तकलीफ है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। क्यों भैया, क्यों नहीं है तकलीफ तुम्हें? तुम कोई अलग से आए हो क्या? बोले नहीं, हम अलग से तो नहीं आए, लेकिन हम इनका स्वरूप जानते हैं। क्या स्वरूप जानते हो? कि ये तो कर्म उदय सारू मिलत और बिछुरत, ये तो कर्म के उदय में मिलते हैं और कर्म का उदय में बिछुड़ते हैं। कर्म हो आयु, कर्म का उदय हो तो आयु देह मिलती है, और आयु कर्म का क्षय हो जाए तो देह छूट जाती है। तो इसके संबंध तो, इसके कनेक्शन तो कर्म से है, मेरे से थोड़ी है। मेरा क्या रोल है? कि मैं तो जानने देखने वाला था तुम। ये तो कर्म उदय सारू मिलत और विछुरत, अनादि की रीति कछु नई नाम रज है। और ये तो अनादि काल की परंपरा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसलिए ये तो तुम्हें सिर्फ समझना है, असली सत्य समझ लोगे तो काम तुम्हारा आसानी से हो जाए। तो अनादि की रीति कछु नई ना मरज है। और वो कहते हैं कि भैया जिनके हिये में मोह है, करें ते हरस तो, और बिना मोह कौन काकी राखत गरज है। अरे बिना मोह के किसने किसकी आज तक कर्ज की है, किसने किसकी परवाह की है। बोले तुम्हें नहीं है परवाह है। बोले ना। बोले क्यों नहीं है। बोले इसलिए नहीं है कि मैं तो दृग ज्ञानमयी ध्रुव परदेश बंद। मैं कैसा हूं, मैं कैसा अनुभव करता हूं कि मैं तो दृग ज्ञानमयी ध्रुव परदेश बंत, मेरे हानि विरधि ना मोह की लरज है। ना मेरे हानि है, ना मेरी वृद्धि है, और ना मोह की लरज है। इसलिए जीव की स्वाधीन सत्ता है, और जीव की स्वाधीन स्वाधीन सत्ता को ये मरण हमारे लिए बताता। इसलिए मरण रोने का प्रसंग नहीं है, मरण दुखी होने का प्रसंग नहीं है, मरण वियोग में शोक संतप्त होकर आर्त ध्यान करके नरकादि गतियों के रास्ते खोलने का प्रसंग नहीं है, बल्कि मरण प्रसंग पर मुक्ति के द्वार का उद्घाटन होना चाहिए। क्योंकि आज स्पष्ट समझ में आ गया है कि वास्तव में मरण नाम की मूल में कोई वस्तु ही नहीं। मरण तो सिर्फ हमारी कषायों के परिणाम का नाम। अगर हमारा कषाय परिणाम शांत हो जाए तो हमें मरण मरण सा फील नहीं हो। हमारे महामनराजों के लिए मरण होने पर भी दुख नहीं होता। उनके गृहस्थ अवस्था के पिता पुत्र मरण को प्राप्त हो जाएं तो उनको शोक नहीं होता, उनको मरण का दोष नहीं लगता कि अब तुम्हारे लिए तुम वो नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, जो ऐसा अपने लिए लगता है। और देखिए जरा विचार कीजिए, मरण का स्वरूप क्या है। पहले तो मैंने बताया था कि समस्त संयोगों का वियोग हो जाना मरण का स्वरूप है। अब देखिए जब मरण कोई जीव मरता है तो एक दो तीन मैक्सिमम तीसरे समय तो वो अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। 3 समय बाद चौथे समय तो वो जन्म ले लेता है वहां। आप विचार करो, जो व्यक्ति भी तीसरे चौथे समय जन्म लेकर के अपनी नई जिंदगी शुरू कर देता हो, हम उसके लिए यहाँ बैठे रोते रहे, कहाँ का न्याय है, कहाँ, कितनी उचित है ये बात। और समझो बात को, जिसको तुम रो रहे हो, जिसके लिए तुम दुखी हो रहे हो, यदि कहीं वो पापात्मा हुआ और मरकर अपनी ही नाली में कीड़ा हो गया तो तुम्हारे शोक करते करते रहने पर भी तुम स्वयं ही उसे ठंडों में मरा तो गर्म जल से नहा करके उसे फिर मार दोगे, साबुन शैंपू का तीखा पानी डाल करके फिर मार दोगे। तो जिससे तुम रो रहे हो वो उसी को मारने में तुम फिर कारण बन गए हो। तो कहाँ रहा ये तुम्हारा रोना सफल या उसके लिए, वास्तव में तो तुम अपने मोह के लिए हो रो रहे हो। इसलिए वास्तव में मरण प्रसंग पर शोक करना उचित नहीं है। लोग कहते हैं साहब अब पूरी उम्र जीता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बहुत नई उम्र में चला गया। पर मैं पूछता हूं कि कितनी उम्र जीता गया उसके बाद तुम मरण मरण को शोक नहीं करते। मरण होने पर 200 साल जीता तो चलता। अरे 200 नहीं, 2000 साल जीता तो भी जब मरण होता तभी तुम्हारा वियोग जन इष्ट वियोग जन दुख तुम्हारे चित्त में होता ही हो, क्योंकि तुमने उस आत्मा के सत्य स्वरूप को नहीं पहचाना। और सत्य स्वरूप को नहीं पहचाना, सिर्फ उस देहजन्य व्यक्ति को ही अपना माना और उसका वियोग हुआ, तो चाहे 200 साल बाद हो, चाहे 2000 साल बाद हो, चाहे 2 बरस और चाहे 20 बरस में हो, कहाँ संतोष होता। जब होता तभी इस बात को लेके दुखी होते कि नहीं थोड़ा और जी लेते तो अच्छा हो, थोड़ा और हमारा साथ बना रहता। इसलिए भाई वास्तव में ऐसा स्वरूप नहीं है, हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जयचंद जी छावड़ा साहब जो समय सार के वचनिकाकार हुए हैं जयपुर में, उन्होंने बारह भावना लिखी है। उसमें लिखा है उन्होंने, द्रव्य दृष्टि कर सर्व थिर, अरे द्रव्य दृष्टि से तो सभी स्थिर हैं, कभी नाश को प्राप्त नहीं होते हैं। और परजय स्थिर है कौन, और पर्याय दृष्टि से कौन स्थिर हुआ है, कोई रहा है क्या आज तक? इसलिए द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परजय नए कर गौण। परजय नए को की अपेक्षा पर्याय को गौण करके द्रव्य दृष्टि में अपनापन स्थापित करो तो भी ये मरण का भय टल जाए, क्योंकि पर्याय दृष्टि से तो कोई नहीं बचा। एक नयन सुखदास जी हुए हैं, उन्होंने बारह भावना में लिखा है, भय तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली तो अब क्या करिए। तो जवाब मिला, अरे जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। क्यों? क्योंकि इनका तो स्वरूप ही ऐसा है नदी नाव संयोग। नदी और नाव का संयोग कितने समय का है, आज इधर और कल उधर। कुटुंब ऐसे हैं, कुटुंब के लोग कर्म के योग से हो रहे भेले। भेले माने एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, दिन दो एक के मेहमान हैं फेरे अकेले। अजी मैं चेतन चेद रूप चिदानंद रूप जगत दुख कूप, हमें क्या करना। अब लिया पंच परमेष्ठ तुम्हारा शरणा। इसलिए भाई वास्तव में हमें विचार करना चाहिए कि ये देह हमारे लिए आर्थ ध्यान का, देह का वियोग आर्थ ध्यान का कारण न बने, समता भाव का कारण बने, धर्म ध्यान का कारण बने, क्योंकि ये तो मिट्टी की है और मिट्टी में मिल गई है। इसमें हमारा क्या था, और हमारे चैतन्य स्वरूप का अंश भी इसमें गया नहीं है। उन्हीं कविराज ने आगे लिखा है, ये माटी में ये मिलेगी, माटी में मिलेगी देह, होएगी खेह, खेह मन राख इसी के नेह। इसी के नेह माने अपने पन में, स्नेह में पड़ा दुख भरना। अब लिया सिद्ध परमेष्ठ तुम्हारा शरणा। अरे नहीं इंद्रादि धनुर्धर सूरे यमराज ने आचक चूरे, नहीं भये मनोरथ पूरे सब रह गए काम अधूरे। मैं अतुल चतुष्टय बान कहो भगवान, कियो नहीं ज्ञान हुआ नहीं तरणा। अब लिया सिद्ध परमेष्ठ तुम्हारा शरणा। बारह भावनाओं का चिंतन किया जाता है इस समय। बारह भावनाओं में पहली अनित्य भावना है, तो ये देहादिक सब संयोग अनित्य हैं, तो कोई परमानेंट सुख चाहता है, परमानेंट वस्तु चाहता है, या ऐसी टेम्परेरी वस्तु से काम चलाता है? अरे टेम्परेरी कोई नहीं चाहता, हमको तो परमानेंट फैसिलिटी चाहिए। तो अनित्य संयोग अनित्य है और भगवान आत्मा नित्य है, उसकी शरण में जाओ तो ये अनित्य की अशरण, अनित्य तो अशरण है क्योंकि उनका क्या शरण लोगे, वो स्वयं ही अशरण भूत है, उनका स्वयं ही विनाश होने वाला है तो हमें क्या शरण मिलेगा। लेकिन हमारा भगवान आत्मा नित्य है, शरण भूत है और सुखमयी है। अरे संयोग तो दुखदाई है, वे तो आते हैं तब दुख देते हैं और जाते हैं तब दुख देते हैं और रहते हैं तब भी दुख देते हैं, चले ना जाए इसका भय हमेशा बना रहता है। कैसे अनित्य अशरण और दुखमयी संसार का त्याग कर नित्य शरणभूत भगवान आत्मा और सुखमयी भगवान आत्मा की शरण हम सब ग्रहण करें तो ही हमारा मरण प्रसंग पर ये विचार करना सार्थक होगा, अन्यथा जीव तो मरते रहते हैं और हम रोते रहते हैं फिर रोना भूल जाते हैं कुछ समय बाद, फिर घर गृहस्थी दुकान धंधा व्यापार में लग जाते हैं, फिर कोई प्रसंग बनता है तो फिर थोड़े आंखों घड़ियाली आंखों बसा लेते हैं, बहा लेते हैं और फिर वापस रूटीन में आ जाते हैं। तो भाई ये जन्म मरण का अनंत काल का चक्र खत्म करना हो तो हमारे लिए इस अखंड कभी ना मरने वाले निज भगवान आत्मा की शरण में जाना चाहिए। उस नित्य शरणभूत भगवान आत्मा की शरण में हम जावें और अनंत सुखी हों, इसी भावना से।